फिलिप द्वितीय 1556 1598। अपने पिता के समान ही फिलिप द्वितीय अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। फिलिप द्वितीय का उद्देश्य प्रोटेस्टेंटवाद का दमन एवं स्पेन की प्रभुता की स्थापना करना था, किंतु कई समस्याओं से घिरा होने के कारण फिलिप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। स्पेन में फिलिप ने एकता स्थापित करने, आर्थिक सुधार करने, कैथोलिक धर्म को सुदृढ़ करने एवं मूरों को भगाने की चेष्टा की। 1580 में उसने पुर्तगाल को स्पेन के साथ मिला दिया, यद्यपि यह विलय 1640 में समाप्त हो गया। फिलिप द्वितीय एवं नीदरलैंड। फिलिप द्वितीय के समय में नीदरलैंड में स्पेन के विरुद्ध विद्रोह हो गया। चार्ल्स पंचम को बर्गेडी के ड्यूक की पैतृक जागीर अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसमें फ्रांस कोमटे, मेसेलेन, फ्लैंडर्स, नामूर, हेनाट, हॉलैंड, जेलैंड, ब्रावाट, अंशतः लिम्बर्ड एवं लक्समबर्ग के प्रदेश सम्मिलित थे। विरासत के इस केंद्र में चार्ल्स पंचम ने विजय द्वारा टूर्ने एवं कैम्ब्रे के नगर राज्यों एवं उत्तर पूर्वी नीदरलैंड के कई प्रदेशों जैसे फ्रीजलैंड, यूट्रेक्ट, ग्रोनिनजेन, ओमेलांडेन, ड्रेंथ एवं जेल्डरलैंड के प्रदेशों को जोड़ दिया। इन सब को सम्मिलित रूप में 17 प्रांतों के नाम से पुकारा जाता था। नीदरलैंड के ये प्रदेश यद्यपि विरासत एवं विजय के माध्यम से स्पेन के शासक के अधीन आ गए थे, किंतु अपने स्पेनिश स्वामी के साथ उनकी कोई समानता नहीं थी। स्पेन सामंती एवं कुलीन तंत्रीय था, नीदरलैंड लोकतांत्रिक एवं व्यापारिक स्पेन एवं अत्यधिक केंद्रीकृत राजतंत्र था। नीदरलैंड 17 प्रांतों का समूह था, जिसमें से प्रत्येक में अपना गवर्नर एवं संविधान था, और प्रत्येक प्रांत में कई ऐसे नगर थे जो स्वयं ही किसी स्वतंत्र राज्य से कम नहीं थे। नीदरलैंडवासी कैथोलिक थे, किंतु उन पर नए धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ रहा था और काल्विनवाद का नीदरलैंड में स्वागत हुआ था। नीदरलैंडवासी स्थानीय एवं राष्ट्रीय भक्ति की भावना से ही ओतप्रोत नहीं थे, वे व्यापारिक दृष्टि से भी समृद्ध थे। यद्यपि इंग्लैंड के विकासशील उन उद्योग ने फ्लैंडर्स के कई उन केंद्रों को धक्का पहुंचाया था, फिर भी एंटवर्प एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा नीदरलैंड के निवासी और व्यापारी अब भी यूरोप के सबसे धनी लोगों में से था। उत्तरी एवं दक्षिणी नीदरलैंड में कुछ उल्लेखनीय विभिन्नताएँ थीं। उत्तरीय भाग प्रमुखता ट्यूटानिक एवं अधिक लोकतांत्रिक था, जबकि दक्षिण भाग प्रमुखता लातिनी और कुलीन वर्ग प्रधान था। प्रत्येक राज्य अपने आप में संपूर्ण था तथा विभिन्न राज्यों के बीच आपसी द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा की प्रबल भावना भी विद्यमान थी। चार्ल्स पंचम के समय से ही इन विभिन्न प्रांतों में एकता लाने और इन पर स्पेन का प्रभावशाली शासन कायम करने के प्रयास किए जा रहे थे। यद्यपि चार्ल्स पंचम के समय में भी नीदरलैंड वासियों पर अत्याचार किए गए थे, उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए गए थे और विभिन्न युद्धों के लिए धन प्राप्ति के उद्देश्य से उन पर भी कर लगाए गए थे, किंतु फिर भी चार्ल्स पंचम ने उन्हें उसके अधीन बनाए रखा। फिलिप के सिंहासनारोहण के समय ऊपरी तौर से नीदरलैंड में शांति प्रतीत होती थी, किंतु समय बीतने के साथ धर्म, स्वतंत्रता, व्यापारिक सुविधाओं एवं कराधान के प्रश्न अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते गए और ऐसी स्थिति में फिलिप द्वारा उठाए गए प्रारंभिक कदम गलतियों की एक श्रृंखला बन गए। यदि धर्माधिकरण की संस्था को चार्ल्स पंचम ही पीटरलैंड में लाया था, किंतु फिलिप द्वितीय ने इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत कर दिया। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों ही तीन नए आर्कबिशपों के अधीन 14 नई बिशप की पदवियों, जिनके पास धर्माधिकरण की असीमित शक्तियाँ थीं, की स्थापना से समान रूप से क्रोधित थे। एक अन्य प्रारंभिक प्रश्न नीदरलैंड में संरक्षक की नियुक्ति का था। तुर्की के विरुद्ध चल रहे युद्धों के कारण फिलिप स्वयं नीदरलैंड में नहीं रह सकता था, इसलिए एक संरक्षक की नियुक्ति आवश्यक थी। इस पद के लिए उसने नीदरलैंड वासियों को छोड़कर अपनी सौतेली बहन मार्गरेट ऑफ पार्मा को नियुक्त किया 1559। एक विदेशी की संरक्षक के पद पर नियुक्ति से उत्पन्न रोष इस बात से और बढ़ गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट में भी स्थानीय सदस्यों की अपेक्षा विदेशी तत्व प्रधान हो गया, जिनमें अरास का बिशप प्रमुख था। धर्माधिकरण की निंदनीय संस्था की समाप्ति की मांग के साथ कई कुलीनों ने नासा कैलिक्स के नेतृत्व में एक संगठन भी स्थापना की, जिसे कंप्रोमाइज कहा गया। कई नगरों में धर्माधिकरण के विरुद्ध विद्रोह पर आरंभ हो गए। ऐसी स्थिति में फिलिप ने मार्गरेट के स्थान पर अल्वा के ड्यूक को संरक्षक बनाकर भेज दिया। उसके साथ एक बड़ी सेना भेजी गई और अल्वा को नीदरलैंड को बलपूर्वक अंग्रेज अधीन लाने की आज्ञा दी गई। 1566 में उसका आगमन विद्रोह के बढ़ने का अंतिम कारण था। अल्वा द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित भयंकर रक्तपातपूर्ण क्रांति द्वारा नीदरलैंड में प्रायः आतंक का राज्य स्थापित हो गया, किंतु फिर भी नीदरलैंड में विद्रोह जारी रहा। धन की आवश्यकता के कारण अल्वा के स्कैंडिंग और टेंथ पैनी नामक स्पेन में प्रचलित दो टैक्स नीदरलैंड में लागू कर दिए गए। ये प्रत्येक वस्तु पर 20% एवं 10% अतिरिक्त कर के रूप में थे। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य में वृद्धि नीदरलैंड जैसे व्यापारिक देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होने लगी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा डच एवं अंग्रेजी समुद्री डाकियों को दिए जाने वाले संरक्षण से थोड़ी आशा बधी, किंतु अभी एलिजाबेथ स्पेन के साथ खुले रूप में युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, अतः यह आशा भी अधिक देर नहीं चल सकी। ऐसी स्थिति में दलामार्क ने, जिसे एलिजाबेथ ने शरण देने से इनकार कर दिया था, ब्रिल नामक स्थान पर अधिकार जमा लिया और वहां विलियम ऑफ ऑरेंज के नाम का झंडा फहरा दिया। ब्रिल अधिकार एक नई समुद्री शक्ति के उदय का प्रतीक था और इसे डच रिपब्लिक का प्रारंभ कहा जा सकता है। विद्रोह जोर पकड़ने लगा। अल्वा के विरुद्ध नीदरलैंड को कई विजय इसलिए मिली क्योंकि स्पेन के पास कोई नौसेना अथवा तट या जलमार्गों पर नियंत्रण रखने का कोई साधन नहीं था और नीदरलैंड में जहाजरानी का एक महत्वपूर्ण स्थान था। अल्वा ने अंततः थक कर अपनी वापसी की प्रार्थना की। 1573 ईस्वी, उसका प्रभावहीन उत्तराधिकारी रैकेसेंस युद्ध का अंत करना चाहता था, किंतु विद्रोह का नेता विलियम 3 शर्तों पर दृढ़ था: धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय स्वातंत्र की पुनः स्थापना और नीदरलैंड की सार्वजनिक सेवाओं से समस्त विदेशियों का निष्कासन। अतः युद्ध चलता रहा। 1576 में रैकेसेंस की भी मृत्यु हो गई। इसी समय उत्तरी और दक्षिणी नीदरलैंड में परस्पर मतभेद प्रारंभ हो गया। विलियम उत्तर के काल्विनवादी दल के साथ इतने घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो गया था कि समस्त 17 प्रांत उसे अपना शासक मानने को तैयार नहीं थे। क्रमशः उत्तर में काल्विनवादी अधिक उग्र एवं विद्रोही होते गए और दक्षिणी भाग के कुलीन एवं अन्य लोग कैथोलिक धर्म के झंडे के नीचे एकत्र होने लगे। 1579 में अरास के समझौते के अनुसार उन्होंने कैथोलिक धर्म के प्रति अपनी आस्था एवं स्पेन के शासक के प्रति अपना समझौता व्यक्त किया। स्पेनी अथवा ऑस्ट्रियाई नीदरलैंड लगभग 2 शताब्दियों तक हैब्सबर्ग डोमिनियन का भाग रहा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर के राज्यों ने यूट्रेक्ट का संगठन बनाया 1579 में। ये दो घटनाएं इस बात की सूचक थीं कि नीदरलैंड 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। यूट्रेक्ट के संगठन द्वारा हॉलैंड, जेलैंड, जेल्डरलैंड, यूट्रेक्ट, फ्रीजलैंड तथा कालांतर में ग्रोनिंजन एवं अवरीज सेल ने एक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उनकी नागरिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण था। 1584 में विलियम की हत्या हो गई, किंतु स्पेन और संयुक्त प्रांतों का यह युद्ध 1609 तक चलता रहा। 1584 से 85 में इंग्लैंड के लीसेस्टर की सेनाओं द्वारा डच को स्पेन के विरुद्ध छपे सहयोग एवं फिलिप के जंगी बेड़े आर्मेडा की पराजय 1588 ने स्पेन की शक्ति के छीड़ करने में बहुत सहयोग दिया। अंतिम निर्णायक युद्ध एक समुद्री युद्ध था, जिसमें एक साहसी डच बेड़े ने जिब्राल्टर की खाड़ी में स्पेनी जंगी बेड़े पर हमला करके उसे पराजित कर दिया। 1609 में फ्रांस एवं इंग्लैंड की मध्यस्थता से एक 12 वर्षीय युद्ध विराम संधि की गई, जिसके द्वारा स्पेन ने संयुक्त प्रांतों की स्वतंत्रता एवं प्रभुत्व स्वतंत्रता को स्वीकृति दे दी। उन्हें व्यापार की स्वतंत्रता भी दे दी गई। अंततः 1648 में वेस्टाफिलिया की संधि द्वारा स्पेन ने इसे मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार लगभग 40 वर्ष से चलता आ रहा यह संघर्ष इस आतातीत परिणाम के साथ समाप्त हुआ कि व्यापारियों मछुआरों के इस जाति ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ करके अपने समय के महानतम साम्राज्य को एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति ही नहीं बनाया, अपितु अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर ली। युद्ध ने उत्तरी नीदरलैंड के व्यापारिक विकास में योग दिया। डच लोग यूरोप के धान और लकड़ी व्यापार के संवाहक बन गए। वस्त्र व्यापार का केंद्र फ्लैंडर्स से हॉलैंड में स्थानांतरित हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड ने, जो इस समय अपने ही मामलों में उलझे हुए थे, डच व्यापार के विश्वव्यापी विस्तार का प्रारंभ में कोई विरोध नहीं किया और इस प्रकार 17वीं सदी एक प्रकार से डच लोगों के उत्कर्ष की शताब्दी बन गई। दूसरी ओर बहुत सीमा तक यह डच विरोध का भी युग था, जिसमें अंततः यूरोप के अन्य देशों की डच के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा एवं एशिया ने डच रिपब्लिक को उन देशों के साथ युद्ध में उलझा दिया।